हरे कृष्ण। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता अध्ययन करते समय इसका मर्म भले ही हमें समझ में आए या न आए, परंतु हमारे जीवन में बदलाव अवश्य आता है। जीवन जीने के हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। यह गीता में निहित श्रेष्ठ शिक्षाओं की शक्ति को सिद्ध करता है। इन सर्वव्यापी सिद्धांतों का संसार के विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन हुआ है। गीता हमें समझने में सहायता करती है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक आदर्शों को हम अपने जीवन जीने की असली प्रेरणा बना सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानवता को नई दिशा प्रदान करने वाली गीता के इस अद्भुत ज्ञान भंडार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं और विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, सफल शिक्षण कौशल, मृत्यु के बाद जीवन व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, बेंगलोर, मैंगलोर एवं वृंदावन और विदेशों में जैसे केन्या, जाम्बिया तथा मालावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। गीता जयंती के पावन पर्व पर भगवद गीता के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। भगवद गीता ये एक ऐसे सिद्धांतों को देती है जो सर्वव्यापी हैं। जैसे कई सिद्धांत इस पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी के लिए लागू होता है। ऐसे ही सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं जो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो किसी राष्ट्र का हो या किसी धर्म का हो, ये सिद्धांत उन सब पर लागू होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि को जान लेना बहुत आवश्यक है, विशेष करके गीता जयंती के पावन पर्व पर, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता कही थी। भगवद गीता का इतिहास वैसे तो भगवद गीता में ही श्री कृष्ण बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों साल पुराना है। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वान जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं सूर्यदेव, तो ये ज्ञान भगवान ने पहले उनको दिया था, फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया, ऐसे करते करते ये ज्ञान आया। तो वैसे तो ये ज्ञान करोड़ों साल पुराना है, लेकिन फिर से भगवान ने करीब 5000 वर्ष पूर्व अपने मित्र अर्जुन को ये ज्ञान पुनः प्रदान किया। और इसका इतिहास क्या है? महाभारत की रचना व्यासदेव ने की, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। वैसे शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो संपूर्ण महाभारत है उसमें करीब 60,00,000 श्लोक हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर केवल 1,00,000 श्लोक पाए जाते हैं। बाकी अन्य स्थानों पर, अन्य लोकों पर कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इन श्लोकों को गाया है। तो इन 1,00,000 श्लोकों का उद्देश्य है ये 700 श्लोकों वाली भगवद गीता। भगवान ने ये सारी महाभारत की कथा रचाई ताकि भगवत गीता को वो कह सकें। इसीलिए उन्होंने बहुत सही समय चुना भगवत गीता कहने के लिए, जब सभी लोगों की नजरें एक स्थान पर थीं, कुरुक्षेत्र पर। और ये वो समय था जब सारी दुनिया कुरुक्षेत्र को देख रही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा महायुद्ध होने वाला था जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुनिया का ऐसा कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई राज्य नहीं था जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहा हो। और ऐसे समय में जब सारी दुनिया की नजरें ठीक उस युद्ध पर, और वो भी अर्जुन पर लगी हुई थी, क्योंकि अर्जुन अकेला ऐसा वो व्यक्ति था जिस पर युद्ध जीता जा सकता था। और ऐसे समय में भगवान ने उस समय को चुनकर भगवद गीता को प्रकट करने का निर्णय लिया। तो इसका इतिहास प्रारंभ होता है भीष्म देव से। भीष्म देव, जिनको बहुत लंबी आयु का वरदान था, उनके पिता ने ये वरदान उनको दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान, कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वो अपने देह को त्यागेंगे। और ऐसे वरदान को प्राप्त करके भीष्म देव बहुत लंबी उम्र जिए। लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि ये जो वरदान है ये श्राप में परिवर्तित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, दुर्योधन के कार्यों के कारण अपमान पर अपमान सहन कर रहे थे भीष्म देव। जैसे कि लाक्षाग्रह, जहां पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, और फिर सबसे बड़ा अपमान भीष्म देव का हुआ कि उनकी उपस्थिति में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। इस महायुद्ध का प्रारंभ तभी हो गया था जब द्रौपदी का अपमान हुआ। वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों को बड़ा मान दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में स्त्री का अपमान होता है, स्त्री को मान नहीं दिया जाता, वो पशु समाज है। इसीलिए वैदिक शास्त्र स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। कहा जाता है कि स्त्रियों को, बच्चों को, वृद्धों को, ब्राह्मणों को और गायों को कभी मारना नहीं चाहिए। ये वैदिक शास्त्र का सिद्धांत है। तो इसीलिए जब अपमान हुआ भरी सभा में, और वो भी द्रौपदी ने प्रश्न किया भीष्म देव से कि क्या ये सही था, युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके हैं, और अपने आप को हारने के बाद उन्होंने मुझे दांव पर कैसे लगाया। भीष्म देव, जो बृहस्पति के शिष्य हैं, सारे ज्ञान को जानते हैं, वो उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि धर्म के सिद्धांत बड़े जटिल होते हैं, एक दृष्टि से ये सही भी है और एक दृष्टि से गलत भी, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो भीष्म देव के लिए बड़े अपमान की बात थी कि उनके ही समक्ष द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और उन्हें वहां रुकना पड़ा, वे वहां बैठे हुए थे। तो अब भीष्म देव सोचने लगे कि ये तो इतनी लंबी उम्र का आशीर्वाद अब मेरे लिए श्राप हो रहा है। और फिर धीरे धीरे दुर्योधन के दुष्कर्म बढ़ने लगे। दुर्योधन यहां तक पहुंच गया कि उसने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। वो श्री कृष्ण जिनके विषय में स्वयं भीष्म ने घोषणा की थी राजसूय यज्ञ में कि ये स्वयं भगवान हैं, भीष्म देव ने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के कई अवतारों का वर्णन किया, कैसे श्री कृष्ण ने अलग अलग अवतार लिए हैं, फिर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, ब्रज लीलाओं का वर्णन किया सबके समक्ष। वैसे युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ करने का उद्देश्य यही था कि वे श्री कृष्ण का गुणगान करें, और भीष्म देव के द्वारा ये गुणगान हुआ। लेकिन अब उसके बाद जब ऐसे कार्य बढ़ते गए दुर्योधन के, तो भीष्म देव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि अब श्राप से मुक्ति चाहिए। और फिर भगवान की योजना, ये जो भगवत गीता है ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है। जैसे भीष्म देव, वे बड़ी दुविधा में थे, उनकी दुविधा को समाप्त करने के लिए भगवान ने भगवद गीता को कही। अर्जुन दुविधा में था, अर्जुन बाहर का युद्ध करने के लिए तैयार था। 13 वर्षों तक अर्जुन और भीम इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आए जब वो दुर्योधन और उसके भाइयों को और जितने भी राजा हैं उनको वो परास्त कर सकें। और अब वो दिन आ गया। भगवत गीता जिस दिन भगवान ने कही, ये वो दिन था जब भगवत गीता के आधार पर अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ करेगा। ये वो दिन था जब मोक्षदा एकादशी थी। वैसे तो सेनाएं कार्तिक पूर्णिमा से ही इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, डेढ़ दो महीने की तैयारी हुई थी युद्ध की, तो कार्तिक पूर्णिमा से सभी सेनाएं चली और उसी समय से भगवान ने अर्जुन को सहयोग करना प्रारंभ किया था। जब अर्जुन गए थे बहुत पहले युद्ध के ये मांगने के लिए कि हमारी सहायता कीजिए, दुर्योधन भी आए थे और उस समय दुर्योधन भगवान के सर पर थे, श्री कृष्ण लेटे हुए थे और उनके सर की ओर खड़े हुए अर्जुन पांव की ओर खड़े हुए, ये दिखलाने के लिए कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमारी नम्रता होनी चाहिए। इसीलिए जैसे ही श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन को कहा कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वैसे भी अगर दुर्योधन से वो कहते तो दुर्योधन श्री कृष्ण को नहीं उनकी सेना को ही मांगते, लेकिन जब अर्जुन को दिया गया तो अर्जुन ने ये कहा कि मुझे आप चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी अर्जुन ने कहा नहीं, आप ही मुझे चाहिए। और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया था श्री कृष्ण की सेना को लेकर। तो तब से श्री कृष्ण ने तैयारी कर दी थी अर्जुन का साथ देने की। हर क्षण उन्होंने साथ दिया अर्जुन का। जब अर्जुन तैयार हुए, चढ़ने लगे रथ पर, बड़ा सुंदर वर्णन है, अर्जुन सफेद वस्त्र पहने हुए, उन्होंने कवच धारण किया हुआ, हाथ में गांडीव लिए हुए, अब वो चल रहे हैं, रथ पर चढ़ना है। और सब जानते थे कि अगर ये युद्ध जीता जाएगा तो अर्जुन के कौशल से, अर्जुन की वीरता से। और उस समय जब अर्जुन चले तो श्री कृष्ण जो उनके सारथी हैं, श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ ऐसे रख दिए नीचे और अर्जुन से कहा कि इस पर हाथ, आप अपने पांव रखकर ऊपर चढ़ जाओ। ये प्रेम था भगवान का। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति इतना प्रेम था कि जब वो शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन ने बहुत व्यवस्था की थी, दुर्योधन ने उनके लिए बड़ा 56 भोग बनाया और दुर्योधन ने कहा कि आप आइए, भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन सहन नहीं कर पाया और उसने प्रश्न किया भगवान से, आप कैसे मेरे प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं, आप कैसे, मैंने इतनी सारी व्यवस्था की है आपके लिए, आपको आना ही होगा। और उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है मैं उसका कोई चीज स्वीकार नहीं करता। क्योंकि तुम पांडवों से द्वेष करते हो दुर्योधन, तो ये 56 भोग तुम्हारा मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान देते हैं कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्तों से द्वेष कर भगवान को प्रसन्न करना असंभव है और दुर्योधन यही प्रयास कर रहा था और इसीलिए भगवान ने उसको नकार दिया। और अब दुर्योधन के मन में बड़ी ही वेदना हो गई कि कैसे भगवान ने ऐसे किया, श्री कृष्ण ने ऐसे कैसे किया। और उसी के कारण उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। और फिर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। और फिर अब युद्ध की तैयारी, अब युद्ध अवश्यंभावी था, युद्ध को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि दुर्योधन ने बड़ी ही कड़ाई से कह दिया था कि मैं सुई की नोक की भूमि भी नहीं दूंगा, इतनी भी भूमि नहीं दूंगा जितनी सुई की नोक में आती है। और ऐसा कहने के बाद अब कोई चारा नहीं था, एक व्यक्ति था जो युद्ध को रोक सकता था और वो था धृतराष्ट्र। लेकिन देखिए धृतराष्ट्र की आसक्ति, भगवत गीता ये धृतराष्ट्र के नाम से प्रारंभ होती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भगवत गीता में धर्म का वर्णन होना है, जैसे भगवत गीता का पहला शब्द है ध और अंतिम शब्द है म, बीच में जो है वो धर्म है, तो धर्म के जिसमें वर्णन होना है उसका प्रारंभ एक अधर्मी से हो रहा है, धृतराष्ट्र उवाच, ये पहला शब्द है। तो इसीलिए ये क्यों है इसको समझिए। बड़ा आसक्त था धृतराष्ट्र, युद्ध के पहले व्यासदेव आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र ने प्रणाम किया, व्यासदेव ने कहा, धृतराष्ट्र कहो क्या इच्छा है, क्या तुम दृष्टि चाहते हो, मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूं। धृतराष्ट्र अंधा था, हम सब जानते हैं। तो व्यासदेव ने कहा, मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूं धृतराष्ट्र, तुम सब कुछ देख सकोगे, युद्ध देख सकोगे यहीं बैठकर। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये बताइए कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, आप त्रिकालज्ञ हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे व्यासदेव ये त्रिकालज्ञ होते हैं। त्रिकालज्ञ मतलब जो पूर्व काल का, वर्तमान का और भविष्य को भी जानते हैं, जो देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो व्यासदेव से प्रश्न किया कि बताइए क्या है, क्या परिणाम होगा युद्ध का। व्यासदेव ने कहा, धृतराष्ट्र तुम्हारे पुत्रों का काल आ गया है। बहुत स्पष्ट कर दिया व्यासदेव ने, मरने वाले हैं सब, मृत्यु को प्राप्त होंगे। और धृतराष्ट्र ने उस समय कहा कि मैं दृष्टि नहीं चाहता, मैंने अपने पुत्रों को जीवित नहीं देखा है, मैं उनके शव देखना नहीं चाहता। तो ये जानते हुए कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे, धृतराष्ट्र की आसक्ति ने उसे युद्ध रोकने के लिए बाध्य नहीं किया। और यही आसक्ति थी उसकी कि शायद वो बना रहे अपने सिंहासन पर। तो धृतराष्ट्र इतना कुछ जानते हुए युद्ध को रोका नहीं, उसने युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और भगवत गीता की शुरुआत उसके नाम से इसीलिए हुई क्योंकि उसके अंदर बड़ी आसक्ति थी, अर्थात भगवत गीता हम जैसे लोगों के लिए है जो बड़े आसक्त हैं इस जगत से, जिनकी आसक्ति जाती नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता है, उन्हें समझाने के लिए कि कैसे इस जगत में रहना है। हमें इस जगत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने व्यापार, अपने परिवार, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता हमें हिमालय में चले जाने की सूचना नहीं देती है। भगवान ने तो अर्जुन से मना किया, अर्जुन जाना चाहता था। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है कि अपने गुरु को मारने से अच्छा गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपी हलोके, कि अच्छा है कि मैं भीख मांगू जाकर, लेकिन अपने गुरु को नहीं मारूंगा। ऐसी अवस्था में था अर्जुन कि वो भीख मांगने तैयार था, लेकिन भगवान ने उसको मना किया, अपना कर्तव्य नहीं त्यागना। श्री कृष्ण भगवद गीता में कर्तव्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, कर्तव्य को त्यागने के लिए नहीं। ये गलत धारणा है लोगों की। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवद गीता पढ़कर लोग वैरागी हो जाते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि भगवद गीता कृष्ण ने कहां पर बोली, उन्होंने सैनिकों के बीच में बोली। भगवद गीता उन लोगों के लिए है जो युद्ध करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो भागना चाहते हैं। और इसीलिए अर्जुन भागना चाहता था, श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। तो ऐसे इस युद्ध को अब रोकना संभव नहीं था, दोनों सेनाएं अब आमने सामने आ गईं। और फिर ये दिन आया जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता को कहना था, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुंह में डाल दिया। आप विचार कीजिए कि जब अर्जुन, वो अर्जुन जो 13 वर्ष से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तीर चलाऊंगा इन लोगों पर, वो भगवान से कहता है, आप थोड़ा रथ ले चलिए मेरा, वहां पर बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग खड़े हुए हैं जो हमसे मरने वाले हैं। अर्जुन जानता था वो जीतेगा, तो अर्जुन ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आए हैं दुर्योधन का साथ देने के लिए। और फिर अर्जुन को लेकर भगवान बीच में आते हैं। अब भगवान की योजना देखिए, बहुत बड़ी सेना थी, ऐसा नहीं था कि छोटी सी सेना थी, लेकिन भगवान अपना रथ कहां लेकर जाते हैं, सीधे द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन की आसक्ति भीष्म में है। अर्जुन बहुत प्रेम करते थे भीष्म से, और अर्जुन ने जब भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, तो जो बाहरी युद्ध था जिसको उसे अब करना था, उसको छोड़कर एक आंतरिक युद्ध शुरू हो गया। भगवत गीता हमें एक ऐसे युद्ध को जीतने का मार्ग देती है जो शायद हमें कभी बाहर नहीं करना पड़ेगा। हम कभी ऐसी अवस्था में शायद नहीं आएंगे जहां हमें अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, जहां हमें युद्ध करना पड़ेगा अपने ही भाइयों से। लेकिन हम सबको एक युद्ध करना होता है जो हमारे मन में चलता है, एक ऐसा युद्ध जो हम अपनी इच्छाओं से करते हैं, एक ऐसा युद्ध जो हम अपने विचारों से करते हैं, एक ऐसा युद्ध जो हम अपनी बद्धता से करते हैं। ऐसे युद्ध को जीतने के लिए भगवत गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस युद्ध को जीतने के लिए ज्ञान दिया। अर्जुन ने जब आंतरिक युद्ध जीत लिया, बाहरी युद्ध जीतना कोई कठिन नहीं था। इसीलिए आप सब जानिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसके दो ही कारण हैं, पहला हमारे कर्मों का फल और दूसरा भगवान की योजना। और दोनों अवस्थाओं में हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन भगवान एक उपाय देते हैं, भगवत गीता। हमारे पास हमारे कर्मों को, पूर्व कर्मों को बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके फल के प्रभाव को नष्ट करने की शक्ति है, भगवत गीता। तो इसीलिए जैसे हमारे पूर्व कर्मों से हमें फल मिलते हैं जिनके कारण हम कष्ट भोगते हैं, हमारे अंदर आंतरिक युद्ध चलता है, उसको जीतने के लिए भगवत गीता की आवश्यकता है। और भगवान ने भगवत गीता कही ही इसलिए ताकि इस युद्ध को जीत सके अर्जुन। और अर्जुन के मन में क्या युद्ध चल रहा था? अर्जुन सोच रहा था कि केवल भूमि के टुकड़े के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरु को, जो सामने द्रोणाचार्य जिन्होंने हाथ में धनुष पकड़ना सिखलाया, मैं उनको मार डालूं, भीष्म देव जिन्होंने अपनी गोद में मुझे पालकर बड़ा किया। अर्जुन कहते हैं एक समय पर जिस दिन भीष्म का वध होना था, 10वें दिन महाभारत के युद्ध में 9वें दिन की रात्रि पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या क्षमा नहीं किया जा सकता भीष्म को? और वो कहते हैं, आप जानते हैं भीष्म का स्थान मेरे लिए क्या है? वो कहते हैं कि हम जब आए थे हस्तिनापुर में, कुंती महारानी 5 पुत्रों को लेकर आई, और उस समय सबने प्रश्न किया, पांडु महाराज नहीं है, माद्री नहीं है, हम कैसे विश्वास करें कि ये पांडव के पुत्र हैं या पांडु के पुत्र हैं, ये पांडव हैं? कितना बड़ा आरोप लगा कुंती महारानी पर। और उस समय भीष्म देव थे जिन्होंने दोनों हाथ खोलकर हृदय से उनका स्वागत किया और उनको अपने सही स्थान पर बिठाया। कुंती महारानी को उनका सही स्थान दिया, पांडवों को उनका सही स्थान दिया। अर्जुन कहते हैं कि मैं कई महीनों तक ये जानता नहीं था, कई समय तक, कि ये मेरे पिता नहीं है। मैं उनको पिता कहकर संबोधित करता था, और जब मैं खेलता था मेरे पांव गंदे हो जाते थे, मैं भाग कर आता था, भीष्म देव के कपड़े एकदम सफेद हुआ करते थे और मैं सारे कपड़े गंदे कर देता था, लेकिन कभी भीष्म ने मुझे क्रोधित नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया, और वो हमेशा मुझे प्रेम देते थे। ये तो काफी समय बाद उन्होंने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तो उनको ही अपना पिता मानता था। तो ऐसा प्रेम था भीष्म के प्रति, और अब भगवान ने एकदम उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अब देखो भीष्म को, द्रोण को देखो। अर्जुन ने देखा द्रोण और भीष्म को, और वो अर्जुन जो 13 वर्ष से जल रहा था अग्नि में, अचानक उसका हृदय विदीर्ण हो गया, दुर्बल हो गया हृदय, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ से उसका प्रसिद्ध गांडीव धनुष जो बहुत मजबूती से वो पकड़ा करता था वो गिरने लगा। अर्जुन खड़ा नहीं हो पाया, शक्ति चली गई। किस लिए? अर्जुन ने सोचा कि कैसे मैं केवल भूमि के टुकड़े के लिए अपने गुरु, अपने पिता समान, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को कैसे मैं मारूं? ये तो सही नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम अध्याय के तात्पर्यों में लिखते हैं कि ये अर्जुन का साधु स्वभाव है, और ये होना चाहिए। हमें किसी को भूमि के लिए मारना या अपने आनंद के लिए मारना, ये तो सही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते ये तो साधु स्वभाव है, लेकिन इस साधु स्वभाव को श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्यों नहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली कि हां अर्जुन ठीक है, तुम कह रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए भूमि के लिए, केवल अपने आनंद के लिए और वो भी वो जो आपसे आपके रिश्तेदार हैं, आपके गुरु हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने इसको स्वीकार नहीं किया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो वो अर्जुन जो गीता के प्रारंभ में कहता है कि मैं भीख मांगने तैयार हूं, युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा क्योंकि अगर मुझे भूमि मिलेगी तो वो खून से सनी होगी, अर्जुन मना करता है। लेकिन ये भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, केवल भगवत गीता के अंत में उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन भगवान से कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात्मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तवा। वही अर्जुन कहता है सारा मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह, कोई संदेह नहीं है, स्मृतिर लब्धा, मुझे अब याद आ गया मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, भूल गया था मैं जो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ये मेरा अज्ञान था। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात् मया च्युता, हे भगवान आपके प्रसाद आपकी कृपा से मुझे फिर से स्मृति आ गई। स्थितोस्मि, अब मैं अपनी स्थिति में बहुत स्थित हूं, गत संदेह, कोई संदेह नहीं है, करिष्ये वचनं तवा, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवद गीता समझने का ये लाभ है, करिष्ये वचनं तवा, हम वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं, हम वो नहीं करेंगे जो समाज चाहता है, हम वो नहीं करेंगे जो गलत है, हम वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं। तो ऐसा क्या कह दिया भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कि वो अर्जुन जो युद्ध नहीं कर रहा था, भागना चाहता था, लेकिन वो अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करके कहता है कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात् मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये भगवद गीता पढ़ने का लाभ है कि हमें जो श्री कृष्ण चाहे वो करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए जो समाज कहता है, हमें वो नहीं करना चाहिए जो गलत है, हमें वो करना चाहिए जो भगवान कहते हैं, जो श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन कहता है कि जो आप कहेंगे अब मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा क्या था भगवद गीता के इन श्लोकों में, ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया अर्जुन को जो अर्जुन पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो ये चीजें भगवद गीता के सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन में, हमारे मन में चल रही जो युद्ध है उसको जीतने के लिए बहुत जरूरी हैं। अर्जुन ने भगवद गीता सुनकर पहले आंतरिक युद्ध जीता और फिर बाहर का युद्ध जीता। तो अगले सत्र में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भगवान ने ऐसा क्या कहा जिसके द्वारा ये आंतरिक युद्ध को अर्जुन बड़ी आसानी से जीत सका। हरे कृष्णा।